जो सीमा नहीं, आनंद की भी कोई सीमा नहीं। तो ऐसे अगाध आनंद सागर के मां अपने दिल से हम ऐसा ध्यान करें कि मेरे चारों तरफ आनंद ही आनंद है, नीचे ऊपर बाहर भीतर मेरे आनंद ही आनंद है। या मैं का मतलब है कि जैसा अपने आप को अज्ञान अवस्था में मैं लिखा है, जैसा ये मनुष्य का शरीर है इसमें ये भाव है कि ये मैं हूं, तो इस मनुष्य शरीर के नीचे ऊपर बाहर भीतर समझना आनंद का ही अनुभव करे। ये जो मनुष्य का शरीर है, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में रोमियों के नाम और अनियों के बीच के नाम परमाणु पूर्ण निर्माण समझो कि एक एक अणुओं के बीच के नाम समझना आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। जैसे ब्रह्म के ढीले में धीरे धीरे भरा हुआ है, जैसे बादल के बीच के नाम धीरे भरा हुआ है, इस प्रकार से कि अपना जो शरीर है, मन बुद्धि है, इन सबको आनंद से परिपूर्ण अनुभव करे कि आनंद ही आनंद है। ये उस आनंद का ध्यान है। शांत काल में सबसे बढ़कर साधन ये है, शांत का वो फल है कि वो परमात्मा की प्राप्ति। तो साधन के समय के बीच के मन ऐसा ध्यान करे कि मेरे नीचे ऊपर सब जगह आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आनंद के स्वर कोई वस्तु भी नहीं देगी, वो सब जो पदार्थ थे वो तो स्वप्न वृत्ति माया मात्र थे। उस ब्रह्म का संकल्प था, ब्रह्म ने अपना संकल्प उठा लिया, तो संसार या कोई भी पदार्थ सुने या केवल मैं बस गया, तो मैं उस ब्रह्म के ध्यान में हूं, तो ब्रह्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं। ब्रह्म का मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि ब्रह्म सो सच्चिदानंद है, आनंद ही आनंद है, स्वस्थ आनंद धन कहा जाता है। और वो आनंद सुचेतन है, अरे भावरूप तो है, इसीलिए इसको सत्य चित्तानंद धन कहते हैं। एक उस परमात्मा के स्वर कोई पदार्थ है या नहीं, और उस परमात्मा का ज्ञान भी उस परमात्मा को ही है, कोई दूसरे पुरुष को किसी को नहीं। जब संसार का ज्ञान हो जाए और ये शरीर इस संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, तो ऐसा अनुभव करे कि इस शरीर के चारों तरफ आनंद ही आनंद है। चारों तरफ आकाश ही आकाश दिखता है, तो उस आकाश ऐसा करे कि परमात्मा ही यहां आकाश की जो प्रतीत हो रहा है, एक आनंदमय के स्वर दूसरा कोई पदार्थ या नहीं। आकाश में जो पक्षी उड़ता है वो अपने चारों तरफ आकाश ही आकाश देखता है और कुछ भी नहीं देखता, तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो आकाश की जो है सो अनंत है। और साधक जो है, साधक तो रहा पक्षी की जो, परमात्मा रहा आकाश की जो, या यूं कहो कि साधक तो रहा बादल की जो, परमात्मा रे आकाश की जो, तो जैसे आकाश में बादल चलता है ऐसे ही शरीर उस परमात्मा में चलता है। तो आकाश की जगह तो परमात्मा और बादल की जगह पर शरीर को, बादल के भीतर में भी आकाश है और बादल जब मिल जाएगा तो आकाश तो रहेगा ही, तो शरीर मिल जाएगा तो परमात्मा तो सदा ही रह तो रहेंगे। तो ये शरीर जो है ये उस परमात्मा का संकल्प है, जिसे संसार का संकल्प उठा दिया भगवान ने, ऐसे शरीर का संकल्प जो भगवान उठा लेंगे तो शरीर की जगह भी फिर भगवान ही आएगा। तो इस तरह से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शरीर का ज्ञान हो तो इस शरीर के रोम रोम के बीच के मां एक है अनुमात भी कोई जगह खड़े नहीं है कि जहां परमात्मा ने, जैसे बादल की एक अनुमात्र में जगह कोई ऐसी खड़ी नहीं कि आकाश न, तो जैसे बादल में आकाश है ऐसे इसे मेरे शरीर के नीचे और बाहर भीतर एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। और ये शरीर से मिटने वाली चीज है तो संकल्प की चीज है, इसके मिटने के बाद तो फिर केवल एक परमात्मा है ही, उसके स्वर कोई वस्तु है ही, और ये ज्ञान भी परमात्मा को है। ऐसे ध्यान के बीच के में एकदम अपने मस्त हो जाए, मन हो जाए। अपारणं शान्तं घनारं नचलानं ध्रुवानं नित्यानं बुद्धस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं। फिर आगे जाकर के शरीर का ज्ञान नहीं रहता, केवल परमात्मा ही सोए जाते हैं। वो परमात्मा का कैसा जो स्वरूप है परमात्मा ही जानते हैं, या जो परमात्मा बन जाता है वो जानता है, बन जाता है वो परमात्मा से अलग नहीं रहता, उसमें मिल जाता है, एक हो जाता है। तो ये कह दो कि परमात्मा कैसा परमात्मा जाने, या ब्रह्म का कैसा स्वरूप ब्रह्म जाने, या यू कह दो जो परमात्मा में प्राप्त हो जाता है वह पुरुष ब्रह्म के स्वर कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करता है। इसी को ब्रह्म में विलीन होना कहते हैं, इसी को ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो और सब चीजों का वहां अत्यंत अभाव हो जाता है, वो खुद भी ब्रह्म से अलग होकर के नहीं रहता, ब्रह्म के वहां मिलकर के ब्रह्म नहीं रहता है। बताया गया कि परमात्मा सत्य चित आनंद घन है, अनंत है। तो ये सुनकर करके सत वस्तु को जैसा आप समझते हैं ऐसा ब्रह्म का स्वरूप नहीं, उससे बहुत विलक्षणता है। लोग तो समझते हैं कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। सत जो वस्तु है उसका कभी अभाव होता नहीं, ना अभाव विद्यते सतः, सतः अभाव नहीं विद्यते, सत का कभी अभाव नहीं होता। और असत है उसका कभी भाव नहीं होता। मिथ्या जो वस्तु है वो कायम नहीं रहती, और सत्य जो वस्तु है उसका कभी अभाव होता नहीं, सदा कायम रहती। इस बात को समझ करके आप ऐसा समझ लोगे कि परमात्मा सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो चीजें नष्ट हो रही है वो असत्य है, मिथ्या है। तो ये आर्म का समझना ठीक है, किंतु वास्तव में परमात्मा के विषय में ये मान लिया कि उसका अभाव नहीं होता, इस प्रकार की मान्यता में आने वाली जो सत है उसे परमात्मा भूत विलक्षण है। मानते तो आप है ना, आप वो मानने वाले असत है जो एक पदार्थ है, उस विषय में आपकी जो मान्यता है उस सत को आप इदिंता करके देखते हैं कि ये सत और ये झूठ। तो झूठ के मुकाबले में जो सत है ये तो मिथ्या और ये सत है, तो दोनों जड़ है। सत तो आप है जो उन दोनों को जानते हैं। तो परमात्मा का जो स्वरूप है उसको अस्तित्व है इस प्रकार से थी जानने में नियम है। जैसे दो पदार्थ एक झूठ एक मिथ्या, माने एक झूठ और एक सत्य जैसे दो पदार्थ है इस प्रकार से नहीं। वहां तो दूसरा कोई पदार्थ नहीं तो मुकाबला किसका हो, वो तो परमात्मा स्वयं है और वो आप ही अपने आप को जाने हैं, वो दूसरों के द्वारा जाना नहीं जा रहे है। ये जानने उसको जानना है। समझ में आने वाली जो सत्ता है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। समझ में आने वाला कोई भी पदार्थ चढ़ है तो जड़ता में लेके के जो परमात्मा का स्वरूप है वो वास्तव केवल असली परमात्मा का स्वरूप नहीं है। असली परमात्मा का जो स्वरूप है उसको कोई दूसरा समझ नहीं सके और दूसरे के समझ का जो विषय हो जाता है वो तो जड़ है। परमात्मा सो चेतन है, समझने वाला है वो चेतन है, समझ में आ रहा वो जड़ है। तो परमात्मा चेतन है, उसकी सत्ता से सब हम लोग समझते हैं और परमात्मा को कोई नहीं समझ सकता। तो समझा नहीं जा सके ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा जो है दूसरे के द्वारा जाना जा नहीं सके तो जानने आने का विषय नहीं है। परमात्मा आप ही अपने आप को जानते हैं, ये जानना है असली जानना है। तो उसकी जो सत्ता है अस्तित्व जो है वो उससे अलग नहीं है। परमात्मा है ये निश्चय कर लेना, ये परमात्मा है ये मान लेना ये परमात्मा की सत्ता है। और परमात्मा से सत्ता कोई अलग चीज नहीं है। इसी प्रकार से उसकी जो चेतनता है वो भी बहुत ही विलक्षण है। जहां दो पदार्थ है एक जड़ और एक चेतन, वह चेतनता भी परमात्मा का स्वरूप है, किंतु जो असली जो वास्तव में जो परमात्मा का स्वरूप है वो इससे विलक्षण है। शरीर के भीतर के मां जो एक जीवात्मा है और वो सब पदार्थों का ज्ञाता है, तो जहां सब पदार्थ बने हुए हैं वहां सब पदार्थ किए हैं और जीवात्मा ज्ञाता है। ज्ञाता और ज्ञेय, तो ज्ञेय वो जड़ है और ज्ञाता वो चेतन है। तो जड़ की अपेक्षा चेतन जहां दो पदार्थों का मुकाबला होकर के एक को जड़ कायम किया जावे एक को चेतन कायम किया जावे, इस प्रकार की चेतनता नहीं। यह जो चेतनता है वो बिल्कुल सिंह है, इस वास्ते उसको आवास मात्र है। असली जो परमात्मा में जो स्वरूप है, जिनको मुकाबला जड़ के साथ में नहीं आ सके, इस प्रकार से जो समझ में आ रहा है कि ये तो जड़ पदार्थ है, ये चेतन पदार्थ है, तो इस प्रकार का निर्णय करने वाला भी कोई है ज्ञाता पुरुष। तो जानने वाले व्यक्ति के दृष्टि में ये बात आई कि ये जड़ है, ये चेतन है, उस प्रकार की चेतनता है, तो ये पूरे की चीज है। जहां परमात्मा की प्राप्ति है, जहां केवल एक चेतन है, वहां जो जड़ है चेतन, ऐसा मुकाबला नहीं होता, ऐसा अलग अलग भाव नहीं होता, ये दोनों ही वहां नहीं रहते। इन दोनों से विलक्षण परमात्मा का जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, परमात्मा है तो चेतन, किंतु इस प्रकार से जो समझाई जाती है कि नहीं देने के चेतन, इस प्रकार की समझ से वो परे की चीज है, वहां कौन किसको समझाए जब केवल एक परमात्मा ही हो, तो वहां तो केवल परमात्मा ही है, तो वो किसको समझावे, क्यों समझावे, समझाने वाला कौन बने, वहां तो एक केवल वस्तु है, तो उसको चेतन कहा जाता है, इसलिए कि जड़ से विलक्षण है, और जड़ के मुकाबले में जो चेतन है ऐसी चेतनता नहीं। तुम कहते हैं कि हाँ उस चेतन को मैं जानता हूं, तो तुम्हारे जानने में आने वाली जो चेतनता है वो तो जड़ ही है, जबकि तुम उसको जानते हो, वो तो किसी का विषय नहीं हो सकता। तो सुन परमात्मा आप ही अपने आप को जानते हैं, तो ऐसी अलौकिक चेतनता है, और आनंद जो बदला जाता है वो चेतन ही आनंद है, उस चेतन से अलग कोई आनंद उसमें गुण के रूप में या लक्षण के रूप में नहीं है। यदि कहो कि उस आनंद को मैं समझ गया कि वह आनंद इस लौकिक आनंद से विलक्षण है, इस लौकिक आनंद का तो ज्ञाता दूसरा ही रहता है, और उस आनंद का ज्ञाता तो वो स्वयं आनंद आप ही है, इस प्रकार में स्वयं है, तो ये समझना भी तुम्हारा बेकार है। तो तुम्हारे समझना जो आ रहा है ना, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। उस आनंद को इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता कि जैसे तुम समझ रहे हो, जो जड़ जो आनंद है उससे वो और थोड़ा विलक्षण है, जो तुम समझ रहे हो जड़ से मिला हुआ चेतन है, केवल चेतन नहीं है, केवल जब चेतन हो गए तो समझ में आया नहीं, और तुम उसको समझ रहे हो तो वो तुम्हारी समझ में जो चेतन और आनंद आता है उससे वो बहुत विलक्षण है, इसको तो वो दूसरा नहीं समझता, वो तो ब्रह्म आप ही अपने आप को जानता है, और जो ब्रह्म बन जाता है तो वह ब्रह्म आप ही अपने आप को जानता है, वो बात में कायम है, वो भी उसके ज्यादा शामिल हो गया, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म वो बन गया तो उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म को जानता है, तो ये तो उड़े की बात है। ब्रह्म बन जाने के बाद के जिसके मां ये कहा गया होता है कि वो ब्रह्म को जानता है, जानना दूसरे में होता है, अगर वहां ब्रह्म के स्वर कोई है नहीं तो कौन किसको जाने, ब्रह्म आप ही अपने आप को जानता है, ये भी कहना समझाने के लिए है, वहां ब्रह्म ही है। अब वो अपने आप को जानता है इतना भी कहना नहीं मिलता, वो चेतन है, और चेतन ये कहा भी नहीं मिलता है, क्योंकि जड़ की अपेक्षा उसको चेतन कहा जाता है, वो आनंद स्वरूप है ये कहा भी नहीं मिलता है, क्योंकि जहां दुख है वहीं उसको समझा जाता है कि वो आनंद स्वरूप है, जहां आनंद ही आनंद है उससे बिना कोई वस्तु ही नहीं है, तो उसको आनंद के नाम से हम कैसे कह सकते हैं, उसका कोई भी नाम काम नहीं कर सकती, कोई भी उसका वो काम नहीं कर सकती। वो नाम से रहित है, रूप से रहित है, देश काल से रहित है, इन सब पदार्थों से रहित है। है जीवन भाव रूप है, अभाव रूप नहीं। ऐसा जो है वो खुद आप ही अपने आप को जानता है। उसकी जो घनता है वो भी अलौकिक है। हमारी देह के भीतर के नाम जो आत्मा है वो घन है, उसमें इतनी घनता है कि कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कोई देवता के भूतक और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे शरीर में तो देवता प्रवेश कर सकते हैं, हमारे मन में कर सकते हैं, हमारी बुद्धि में कर सकते हैं, किंतु जहां हम हैं, हमारी आत्मा को, हमारा स्वर को, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई प्रवेश कर सके, क्योंकि वो घन है। तो इसी जाति का वो भ्रम है। ये तो जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ ये भी समझाने के लिए सर्व हो तब तो सर्वज्ञ हो, उसके स्वर को हो ही नहीं तो उसको सर्वज्ञ कैसे कहें। बस वो आप ही अपना आप है, और वो घन है, गया है, इतना गहरा उसके मोर कोई प्रवेश कर नहीं सकता। जब प्रवेश नहीं कर सकता तो उसको कैसे जान सके। और उसकी अनंतता भी अलौकिक है, जैसे आकाश की अनंतता है। वो चारों तरफ एक प्रकार से आकाश आकाश दिखता है, इस प्रकार से जैसे आकाश पसला हुआ है, ऐसे ब्रह्म पसला हुआ नहीं है। ये तो अनंत है, सो जड़ अनंतता है। चेतन में ऐसी बात नहीं होती। रात्रि में हमको स्वप्न आता है, और स्वप्न का सारा संसार में सारा संसार जिसको स्वप्न आता है उसका संकल्प मात्र है। फिर भी विचार करना चाहिए कि जिसके अंतर्गत वो सारा संसार है, वो क्या पसरा हुआ सब प्रतीत होता है? आकाश की जो पसरा हुआ नहीं प्रतीत होता, उसका कैसा स्वरूप है ये कुछ उदाहरण नहीं था। जिसमें सारा संसार है, संसार का तो भान होता है, किंतु सारा संसार जिसके में है उसके स्वरूप को नहीं बता सकता। उसको मैं अमीर कह सकते हैं, महान नहीं कह सकते। इसलिए श्रुति कहती है कि वो अणु का तो अणु और महान का महान है। मैं आकाश जैसे पसरा हुआ इस प्रकार का महान नहीं है। सारा ब्रह्मांड उसी के अंतर्गत है, इसलिए महान है। तो उसका स्वरूप बतलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रूप से रहित है, आकाश से रहित है, न छोटा न बड़ा है। ये जो बतलाना है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर है और बड़े से भी बड़ा है। इस वास्ते बतलाना है कि वास्तव के बीच के अनु सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, ये समझाने के लिए कथन मात्र के लिए यह है। न वो सूक्ष्म या न वो बड़ा है, इन दोनों से वो रहित है। नाव को रूप से रहित है, आकाश से रहित है, इसलिए वो अरूप है। किसी भी प्रकार से उसको बतलाया नहीं जा सकता, उसको इन उठा करके नहीं बदला जा सकता, उसका कोई प्रकार से निर्देश नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका नाम अनिर्देश है। संकेत के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। तो उसकी अनंतता है, अलौकिक है। उसकी संता है, वो अलौकिक है। हम लोग जो बाह्य के वहां संभाव देखते हैं कि आकाश सम है, तो आकाश जैसे सम एक पदार्थ, ऐसा नहीं। हमारे हृदय में जैसा एक सम भाव है, बुद्धि का जो सम भाव है, ऐसा भी नहीं। बुद्धि की वृत्ति हो तो संभव जो है वो तो एक जैसे गुणवाचक भाववाचक पदार्थ होते हैं उसी प्रकार का हुआ, ऐसा नहीं है। ब्रह्म की जो क्षमता है वो भी एक अलौकिक है, जो समझ में आने वाली जो क्षमता है ऐसा ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। और इस प्रकार की व्यापकता नहीं है कि जिसे तीन मूर्तियां हो, ऐसी भी नहीं है जिससे बर्फ के मां जल हो। ये जो व्यापक व्यापक जो पदार्थ दिखने में आते हैं इस प्रकार से कि संसार व्यापक ब्रह्म उसमें व्यापक है यह बात भी है, किंतु यह बात पूरे की है समझाने के लिए, बहु का लक्ष्य कराने के लिए। आगे जाकर जब व्यापक पदार्थ नहीं रहता है तो उसको व्यापक किस्म कहें। बादल है उसमें आकाश है तो बादल को आकाश को व्यापक कह सकते हैं, जहां बादल हो ही नहीं वहां आकाश को किसमें व्यापक कहें, जो केवल आकाश है। तो ऐसे जहां केवल ब्रह्म रह जाता है उस ये भी कहना नहीं बनता व्याप व्यापक ही, केवल परमात्मा ही है। समझाने के लिए केवल इतना ही कहा जाता है कि ये परमात्मा के स्वर दूसरा पदार्थ नहीं है, ये परमात्मा के स्वर दूसरे का अतंत अभाव है। भावों को परमात्मा है वो सबका वहां अतंत अभाव है। तो भावों जो पदार्थ है वो कैसा हो स्वयं परमात्मा ही अपने आप को जानते हैं, समझाने के लिए कहना है। इस प्रकार से वो समझ करके उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर संसार की जिंदगी को से एकदम समझो कि अलग हो जाता है। संसार और जीवन जहां रहते ही नहीं है कि एक परमात्मा ही रह जाता है और वो आनंद स्वरूप है, वो आप ही अपना आप है, वो आनंद ही चेतन है, चेतन ही आनंद है। इन शब्दों के यथार्थ रूप को वो प्राप्त हो जाता है, इन शब्दों से जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होने के बाद के बीच कहना उसको किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, प्राप्त हुआ कुछ भी इस शरीर के माध्यम नहीं कह सकता, इसकी जो बुद्धि है उसमें वो बात नहीं आ सकती, तो फिर वाणी के द्वारा कौन कहे। ये मन बुद्धि और उसकी अपेक्षा विलक्षण होते हैं, इसलिए वे जो कुछ वर्णन करते हैं उस परमात्मा के तटस्थ भाव का वर्णन करते हैं। वास्तव में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन में श्रुति कर सकते हैं, समर्थ न ऋषि न मुनि, फिर वे जो कुछ कहते हैं उनको लक्ष्य बनाकर साधन करने से साधक साक्ष में न्याय के लिए उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वहां एक परमात्मा स्वर कोई वस्तु नहीं रहती। नारायण शांतान घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वानंद ज्ञान स्वानंद आनंद ही आनंद आनंद शांति शांति शांति।
सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय का प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति कार्तिक शुक्ला एकादशी सम्मत 2014 तदनुसार तारीख 3/11/57 को प्रातःकाल 8 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।